कारणों में सही बतलाया है।
अच्छा, वंदना में 33 श्लोक है। वंदना में श्लोक इनका है, सत्वा सुदुत्सव सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आज्य बचता यद गादरण्यम माया मृगम दैतेक्षित अन्न भावत वंदे महापुरुष से। मैं उस महाप्रभु की वंदना करता हूँ, मैं उस महाप्रभु की वंदना करता हूँ। कृष्ण को यद्यपि कृष्ण है उनको महापुरुष नहीं कहा, महाप्रभु नहीं कहा। राम को भी महाप्रभु नहीं कहा गया है। ये केवल चैतन्य महाप्रभु जी के लिए ही, आप लोग सर्वत्र देखते हैं विश्व ब्रह्मांड में समस्त महाप्रभु के राम से वो दीक्षा है। तो वंदे महापुरुष महाप्रभु की मैं वंदना करता हूं। वो कैसे हैं? तत्व मने छोड़ करके, क्या छोड़ा? सुदुत्यज सुरक्षित राज्य लक्ष्मी। देवता लोग भी जी राज्य राज्य को नहीं छोड़ पाते, ऐसे सुंदर राज्य। अथवा विष्णु प्रिया रूपी जिन इतनी सुंदरी हैं, इतनी रूपवती और गुणवती हैं, जो उस राज्य की लक्ष्मी रूपी जो विष्णु प्रिया जी हैं, थोड़े दिन विवाह हुआ था उनको स्वादी और धर्मिष्ठ आज्य बचता जत गादर अन्यम परम धार्मिक हैं। बचपन से ही सालग्राम की सेवा करते हैं, हरि नाम कीर्तन करते हैं, पंडित का ये नाम सबसे कराते हैं। कहते हैं जाओ भिक्षा मांग लाओ। भिक्षा क्या मांगना? कृष्ण नाम करो, कृष्ण नाम का गान करो, कृष्ण का चिंतन करो, ये सब भिक्षा मांगते हैं। सबसे करते हैं और सबसे कराते हैं। परम धार्मिक है, अंत में तो संन्यास लेकर के छोड़ करके चले गए और विश्व को अपने प्रेम में प्लावित कर दिया। जो उनके सामने आया उसको प्रेम में पागल बना दिया। मनुष्यों की तो बात क्या, स्त्रियों की तो बात क्या, बाघ भालू हिरण सर्प जंगल में जो सामने मिला उसको प्रेम में एकदम पिघला। सर्प भी ऐसे कर करके कृष्ण कृष्ण कहे, हाथी भी घुटने टेक करके कृष्ण कृष्ण कहे, बाघ भालू सर्प हिरण एक साथ में बकरी भेड़ सब एक घाट में सबको पानी पिला दिया, कृष्ण नाम में मत किया। ऐसे ये हैं धर्मिष्ठ हैं। आर्य बच्चा जब गादरण्यम, आर्य बच्चा मैंने एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण को आर्य भी कहते हैं। जब महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे थे शिवास जी के अंगन में, बहुत से लोग देखना चाहते थे कि कीर्तन कैसे कर, किंतु वो कीर्तन होता था घर बंद कर, अनाधिकारी लोग ना प्रवेश कर। वो ब्राह्मण बहुत देखना चाहता था कीर्तन, उसमें सम्मिलित होना चाहता था, रात भर खड़ा रहा किंतु दरवाजा नहीं खुला। भाजी भाई देखो, मैं रात भर खड़ा रहा और कीर्तन में मैं सम्मिलित नहीं होता था, इसलिए मैं अभी संपात करता हूं, श्राप देता हूं कि तुम्हारा गृह तुम्हारा स्त्री पुत्र और ये सब का जो सुख है वो समाप्त हो जाए। महाप्रभु जी ने उसके बचनों को अपने शिरोधार्य करके जदगादरण्यम सबको छोड़ करके संन्यास लेकर के जगन्नाथ के लिए चले गए। माया मृगम दैतेक्षित अन्न धावत, संसार के जी माया रूपी मृग के पीछे पीछे ये दौड़ रहे हैं ना, जो अपना नहीं है उसको अपना करते हैं। कौन किसका पुत्र, कौन किसकी भाज्या, कौन किसका कोई संबंध, सब तो देखते हैं अकेले आते हैं अकेले चले जाते हैं, दो दिन के लिए हम संबंध है कायम करके। और माया मृग, माया मृग मने जो नहीं है उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। ऐसे ये जीव हैं माया में मुग्ध हैं, अपना भला कल्याण नहीं जानते, जो माया में किसल कर दो उसके पीछे पीछे ये अन्न धावक दौड़ रहे हैं। किस लिए? ये बेचारे बड़े दुखी हैं, कोटि कोटि जन्म तक हमको भूल करके संसार में माया के तरफ में भाग रहे हैं, इनका कैसे कल्याण हो। इसलिए कहते हैं कि तुम कहो कृष्ण 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 कहो, उनसे कृष्ण कहा सके, उनको इधर में लौटाते हैं। इतने बड़े दयालु हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं, महाप्रभु जी हैं, मैं इनकी वंदना करता हूं। कुछ लोग इसी श्लोक का अर्थ करते हैं, ये राम अवतार ने राज्य को छोड़ दिया और सीता देवी को लेकर के गए, और सीता देवी के कहने से उन्हें पिताजी के आदेश से वन में चले गए, राज्य छोड़ दिया, बंधु बांधवों को छोड़ दिए, 14 वर्ष तक भटकते रहे, इसके बाद में लौटे, किंतु महाप्रभु जी लौटे नहीं। इसलिए महाप्रभु के प्रति एक श्लोक अधिक व्याप्त है।
राम जी पिताजी राज्य लक्ष्मी को ले गए,
दूसरी बात लक्ष्मी जी को छोड़ा कहां, स्त्री को छोड़ा, स्त्री को तो साथ में ले गए, इसलिए लक्ष्मी अपनी स्त्री को छोड़ दिया, ये तो अर्थ वहां पर होगा नहीं। जो अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी को तो अपने साथ में ले गए, इसलिए वो अर्थ भी नहीं होगा। और माया मृग के पीछे दौड़े अपने स्त्री के कहने से ये भी पूर्ण रूप से लागू नहीं होता। दूसरी बात, कलयुग में इनका जन्म हुआ कि नहीं ये भी देखना है, और कीर्तन के द्वारा इनकी आराधना होती है कि नहीं, तो ये भी नहीं, इसलिए राम के प्रति लागू है। कुछ लोग कृष्ण के लिए अर्थ लगाते हैं, कृष्ण वर्णन जो कृष्ण जिनका वर्ण है, और बड़ी उज्ज्वल कांति है, जैसे मूंगे मोती के का वो झलकता है ना, उनकी प्रभा वैसे झलकते हैं, ये भी अर्थ नहीं होता। क्यों, इन्होंने अपनी पत्नी कहां छोड़ा, राज्य भी कहां छोड़ा, मथुरा में वृंदावन में राज्य नहीं था, किंतु अब जो वहां पर द्वारका में जाकर के क्या किया, वहां पर तो प्रभारी द्वारकाधीश बन गए, पृथ्वी के समस्त लोगों को उपधावन उनको देने लगे उपहार, तो वो राज्य कहां छोड़ा, इसलिए कृष्ण के प्रति भी नहीं होगा। आर्य बचता कौन से पिता के आदेश से या ब्राह्मण के आदेश से वन में गए, कब गए कृष्ण, इसलिए कृष्ण के प्रति भी नहीं होगा। इसलिए जब सब प्रकार से विचार करते हैं तो भागवत के टीकाकार में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी गोस्वामी इत्यादि सबने एक साथ में विचार करके कहा ये चैतन्य महापुरुष का प्रति, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ही ये महाबंदे महापुरुष। यहाँ पर कलयुग में महाप्रभु की उपासना करना पड़ता है, कैसे उपासना करेंगे, फूल चंदन चित्त को एकाग्र करेंगे, कलयुग में चित्त एकाग्र करना वायु रेव शब्द चित्तम, वायु से भी बड़ा सकते हैं, वायु को वशीभूत कर सकते हैं, मन को एकाग्र नहीं करते, यज्ञ करेंगे ध्यान तो होगा नहीं, यज्ञ करेंगे हमको एक छटाक कोई शुद्ध गाय का घी ले आए, इस समय मिलेगा, अरे हम गैया दूर करके ले आएंगे, अरे तेरी गैया तो इधर उधर जाती है, कुछ घास तो मिलती नहीं, इसलिए बच्चे का छट्टी उसमें लगा करके फेंक देती हैं गैया खा, शुद्ध मिलेगा, शुद्ध मिलना बड़ा भारी कठिन, यज्ञ कराएंगे ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मण देखेंगे इसमें कितना अर्थ देते हैं, आजकल तो भागवत के लिए भी देखते हैं, यदि देखेंगे यदि ये खर्च नहीं करेगा तो भागवत नहीं बांटेंगे, पहले ठीक कर लेंगे, भाई तुम्हारे यहां हम भागवत बांटेंगे, हमको प्रणामी में अंततः 5,000 रुपये चाहिए, और सोने के सिंहासन पर भागवत देना होगा, और सब ठीक कर देंगे, हमारे साथ में ये रहने वाले हैं इनके लिए भी कुछ देना, ये भी एक व्यवसाय हो गया है। तो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण कहां मिलेंगे, वो पहले देखेंगे कि प्रणामी के हाल में कितना पैसा आता है, तब तो वो कुछ करेंगे, और जानने वाले भी यज्ञ कराने वाले भी बहुत कम है, बहुत कम, और है भी तो इस बात भगवान की स्तुति के लिए, भगवान ने हमारा चित्त लगा दिया ऐसा, और अर्चन करेंगे, अर्चन भी कलिकाल में अब संभव नहीं, जहां कहां सुनेंगे मूर्तियां चोरी जा रही है। आप मूर्ति सोने की बना करके रखेंगे, कोई चोरी लेकर के चला जाए। अभी महाबल में हम लोग के संप्रदाय की विग्रह थी, उनको तोड़ दिया, राजनीतिक ये सब मिलजुल कर। आज सुनते हैं कि कहां कहां तस्करी हो रही है, कितने सुंदर 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 विग्रहों को इधर उधर अमेरिका के म्यूजियम में, इंग्लैंड के म्यूजियम में वो सब जा रही है, लाखों करोड़ों एक मूर्ति का दाम। आजकल वो पत्थर हो गए हैं, कलयुग में इसलिए वो भी आ रहा है। कलयुग में सर्व सहज जो जैसा है, जहां पर है, जिस स्थिति में है, स्त्री पुरुष जो कोई भी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, नहीं लिखा हो, गरीब हो, धनी हो, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई सभी लोग भगवान का नाम ले सकते हैं। इसे जहां कहीं रह करके भगवान का हम नाम कर सकते हैं, वही उनकी आराधना। जहां पर जिस रूप में है, कलयुग का हम आमंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस ये जहां कह दिया उनकी आराधना। सर स्नान किया है कि नहीं है, कोई देखने की, पवित्र है कि नहीं ये भी देखने। एक बार हनुमान जी कहीं घूम रहे थे, उन्होंने देखा एक सेवी को समय नहीं, वो पट्टी करते समय में हरी राम राम कर रहा। हनुमान जी ने 1,00,000 जमाई, उसका कुछ नहीं हुआ। अजय मैंने मारा तो रावण गिर गया, हिमिटिया खा गया, और कुंभकर्ण को मारा वो भी गिर गया। हमारे मुक्के को और पैर के लाख को तो उतारने वाला है, और ये इसको कुछ नहीं है, क्या बात है, चिंतित रहे। शाम को जब रामचंद्र जी के पास में गए तो रामचंद्र जी पलंग पर सोए हुए ऊहां कर, प्रभु आज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने तो जीवन में कभी नहीं देखा, तो तुमने ही लाख मारी और तुम पूछ रहे थे कब ऐसा, तो हमने प्रभु आपको कब लाख मारी। और वो जो नाम कर रहा था उस समय मैं तो खुद ही नाम हूं, तो वो नाम कर रहा था उसके उस समय सियंग में मैं प्रवेश किया हुआ था, इसलिए जब तुमने मारा तो वो हमको लगा उसको लगा। अब उन्होंने समझा नाम और नानी दोनों एक है, अभिन्न है, इसलिए जब नाम हो रहा है उस समय भगवान है, ऐसा समझना चाहिए। सौ सहज रूप में कलयुग का यही उपासना की पद्धति है, इसलिए इसी उपासना पद्धति से चैतन्य महाप्रभु ने जगत में ये उपासना पद्धति दी, जो जहां जिस रूप में है बस कृष्ण का कीर्तन करे, भगवान का कीर्तन करे। आज विश्व में सर्वत्र आप लोग देखते हैं, हम लोगों में तो कुछ श्रद्धा कम ही है, हम लोग तो बाल छट रहे हैं, स्त्रियों के भी लड़कियों के भी। जो लड़की अपना बाल नहीं कटा लेती वो सुंदर है ही नहीं। और फ्रॉक ट्रॉक, फ्रॉक माने क्या होता है, मेढक मेढक, फ्रॉक ट्रॉक नहीं पहले तो होगा नहीं। और कहा इंग्लैंड अमेरिका की सब लड़कियां और सुंदरी सुंदरी यहाँ के जैसे कपड़े पहने, धोती पहनना सीख जानते हैं। हमारे यहाँ के लोग धोती नहीं पहन सकते, जो भागवत जो करा रहे हैं वो भी धोती नहीं पहन सकते। हमने कहा भी सभी उनको लांग ही नहीं लगाने आए, और वहां के साथ मोटे कपड़े पहन करके कुत्ता लगा चोटी लगा करके गले में माला लगाते हैं। वहां की देखिए कितनी धनी धनी सब, यहाँ पर किसी को कहेंगे गले में माला लगाओ तो लज्जा के मारे में वो नहीं लगाएंगे, और घर वाले उसको घर में नहीं रहने देंगे। और कहां पर सकते वो लोग आकर के हाथ उठा करके स्त्री पुरुष हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल। इसलिए हम लोग कलयुग में संकीर्तन के द्वारा में चैतन्य महाप्रभु की आराधना करेंगे, वंदे महापुरुष से चरण। इस प्रकार से प्रभाजन ऋषि या तीर्थ ठाकुर ऋषि ने नहीं महाराज को ये सब बातें बताएं। इसके बाद में जो कथा होगी आप लोग यहाँ पर गौ प्रेमानंदे। अभी इन्होंने श्रीमद् भागवत से दत्तात्रेय जी के संबंध में बतलाया कि उन्होंने 24 गुरु किए, 24 शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु तो एक ही होता है, उन्होंने शिक्षा गुरु, उन्होंने कपोत और कपोती, कबूतर और कबूतरी को भी गुरु बनाया। कैसे बनाया इसका उपाख्यान श्रीमद् भागवत में दिया गया, उसको मैं थोड़े से संक्षेप में बतलाता हूँ। एक कबूतर था, बड़े सुंदर वन में वो रहता था, पार्टी में सुंदर नदी बह रही है, हरा भरा मैदान, सुंदर सुंदर वृक्ष है। बाई चांस भगवत इच्छा से उसको एक बड़ी सुंदरी कबूतरी मिल गई। अब कबूतरी के साथ में उसी पेड़ पर अपना उसने वो बना लिया घोंसला, घोंसला बना लिया। बड़े प्रेम से रहते, दिन में साथ रहते, रात में साथ रहते, प्रेम भरी बातें करते, कैसे हमारी शादी हुई, और अपने अपने बातों की बड़े प्रेम से बतलाते। कुछ दिनों के बाद में उनके बच्चे हुए, काफी बच्चे हो गए, बच्चों के पंख जमे, जमने पर अपने पंख से जब अपने माता पिता के पंख स्पर्श करते हैं तो माता पिता अत्यंत आनंद में भर जाते हैं। जब वो पूजन करने लगते हैं कोंका की तो बच्चों की बोली सुन करके तुतली बड़े प्रसन्न होते हैं। जब वह चलना थोड़ा सा उड़ना सीखते हैं, थोड़े से दो एक पैर उड़ करके फिर गिर जाते हैं, माता पिता अपने अंक में ले लेते हैं। बड़े प्रेम के साथ में ये लोग चल रहे, चलते चलते बच्चे जब कुछ थोड़े से बड़े हुए तो ये लोग उनके खाने के लिए कोमल कोमल चीजें को ढूंढने के लिए नदी के किनारे वन में चले गए। तो वो ढूंढ रहे थे, आज कुछ विलंब हो गया, इतने में काला मुस्तंड बह लिया वहां पर। देखा जी वाह, बड़े सुंदर सुंदर कबूतर के बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं चारों तरफ में। उसके मुख से लार टपकने लग गया और सोचा कि इनको अपने जाल में फंसा ले। बस झट उसने जाल वहां पर बिछा दिया और वो मासूम बच्चे कुछ समझते नहीं है, पिता माता रहते जैसे बूढ़े चूहे जाल में फंसते नहीं है, नए नए बच्चे फंस जाते हैं वो जानते हैं, इसलिए ये छोटे छोटे बच्चे उनके जाल में फंस गए। अब तो ये सिसक न गए रोने लगे। थोड़े देर के बाद में मैया पिता आए, उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे जाल में पड़े हुए हैं। माता पिता को देख करके पहले तो रो ही रहे थे और खूब जोर से रोना आरंभ कर दिया। मैया तो पागल हो गई, ये बच्चे तो अब मरे तो मैं ही जीवित रह करके क्या करूंगी। बस हाय हाय करती हुई बच्चों के पास में चली गई और वो भी जाल के अंदर में फंस गए। पति ने देखा हम लोग सारा जीवन एक साथ में रहे, प्रेम के साथ में रहे, सुख दुख में एक साथ में रहे, बच्चों का लालन पालन किया, हमारे बच्चे अब मर रहे, एक तरह से मर ही गए हैं, और ये हमारी पत्नी भी प्यारी पत्नी वो भी फंस गई है, और मैं रह करके क्या करूंगा। अत्यंत विलाप करता हुआ वो भी उसमें पड़ा और भी जाल के अंदर में आबद्ध हो गया। भैया ताली बजाता हुआ मुस्कुराता हुआ हमारा मनोरथ पूर्ण हो गया, सबको उस जाल में आबद्ध करके दो एक बार ऐसे उठा पटक की और वो सब वहीं पर मर गए और उनको लेकर के प्रेम से घर में चला गया, आग में भून करके अवनी है। कहते हैं कि मैंने इस कबूतर को अपना गुरु बनाया और कबूतरी को संसार में हम भजन करने के लिए आए। और ऐसे ही पत्नी के प्रेम में, बच्चों के स्नेह में, उनके पालन पोषण करने में ही अपना सारा जीवन लगा दिया। और देखते देखते क्या होता है, आप लोग संसार को देखते ही हैं। अब मैं इस संसार में नहीं फंसूंगा, मैं इन सबसे अपना कर्तव्य जो हमारा है मूल कर्तव्य वो भगवान का भजन करेंगे, और इनका ऊपर से जैसा है हमारा कर्तव्य हम पालन करेंगे, किंतु उसमें आसक्त होकर के कबूतर जैसे मूर्ख जैसे अपने जीवन को हम बर्बाद नहीं। हमारा कृष्ण से संबंध है, इन लोगों के लिए संबंध हमारा सामयिक है। यदि कोई भगवान का भजन करता है सब ऋणों से मुक्त हो जाता है, वो किसी कार्य में नहीं रहता है। इसलिए मैं इस कबूतर को अपना गुरु बना करके ये सीखा कि अब संसार में फंसना नहीं, हमको भगवान का भजन करना है, ऐसा समझ करके हम लोग भी कबूतर को अपना गुरु बना दें। कबूतर को क्यों गुरु बनाए, हम लोग तो दत्तात्रेय जी को ही गुरु बना लें, और बना करके उन्होंने जहां जहां पर से जो शिक्षाएं दी थी, हम उन शिक्षाओं को ला करके भगवान के भजन में आ गए। अब आगे की कथा आप लोग सब उन्होंने 9 दिनों तक भगवान की बड़ी ललित कथाओं का आगे भी हम लोग ऐसा ही पूजा करें। बीच बीच में ऐसे अवसर आए, आप लोग सभी उसी बहाने आकर के कथा। कल सवेरे जैसे 7 बजे कथा आरंभ होती है, वैसे यहाँ कथा आरंभ होती है। थोड़ी देर में कथा प्रसंग समाप्त होने पर हम सभी लोग मिलकर के भागवत का पूजन अर्चन करेंगे। वैष्णवों का हम लोग सम्मान करेंगे और ठाकुर जी की पूजा के बाद में फिर श्रीमद् भागवत जहाँ से आए थे वहाँ पर हम पाटली में हम श्रीमद् भागवत को ले जाएं। हवन इत्यादि होगा, ब्राह्मण वैष्णव सब लोगों का जैसा होगा महाप्रसाद से उनकी सेवा। आज मैं दो एक बातें कहना चाहता हूँ। साधारण लोग से लोग समझते हैं कि बहेलिया ने कृष्ण को मारा और वो बाण उनको लग गया और भगवान मर गए। यहाँ तक कि प्रभात क्षेत्र में लोग अभी जाने पर दिखलाते हैं कि भगवान को यहीं पर बाण लगा और यहीं पर मर गए और उनका यहीं पर श्राप इत्यादि हुआ और अंतिम दाह संस्कार हुआ, ये भी दिखलाते हैं। किंतु ये सब बातें गलत हैं। श्रीमान शुभानंद जी ने बतलाया काली का बीज उनको कुछ न कर सका, कालकूट बीज हजम कर गए, द्रोण भीष्म पितामह का वो बाण कालकूट बाण भी कुछ नहीं कर सका, काली दल में कूद पड़े, गोवर्धन को उठा लिया, भांडिर बन में आग खा ली, जमुना के किनारे भी आग खा ली और उनका कुछ नहीं हुआ। जम लोग को पार करके सिद्ध लोग से उन बच्चों को लेकर के लौटाए, अपने गुरु माता को उन्होंने दिया, अपनी मैया को दिया और वो मर जाएंगे किसी एक पहलिए के बाण से, ये संभव पर नहीं। ये एक मौसम लीला इत्यादि और ये सब लीलाएं भगवान की एक योग माया के प्रभाव से केवल दिखलाने के लिए मैस्मेरिज्म के समान है। कैसे है, श्रीमद् भागवत में जगह जगह पर लिखा गया, जिस समय भगवान जा रहे थे मनुष्य ने कुछ नहीं देखा, उन्होंने भगवान के शरीर के समान ही एक शरीर को देखा पड़ा हुआ, देवताओं ने देखा जैसे तेज जा रहा है, ब्रह्मा शंकर नारद प्रभृति लोगों ने देखा कि कृष्ण साक्षात अपने परिजनों से परिवेशित होकर के गोलोक वैकुंठ धाम में जा रहे हैं। इसलिए कृष्ण का न तो वैसा कोई मरण हुआ, न तीर्थंस लगा, न कुछ लगा, वो सशरीर ही जैसे आए थे वैसे चले गए। दुर्लक्ष उनको कोई साधारण शरीर वाले लोग आंखों वाले लोग उन्हें नहीं देते। उसी के लिए श्रीमद् भागवत की टीका में ये कहते हैं कि इन श्लोकों की यदि एक छोटा सा नट एक ऐसी नटबाजी कर लेता है जिसको देख करके हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं, तो भगवान तो समस्त मायाओं के भी मायापति हैं। एक समय की बात है, एक नट आया, नट माने खेल दिखलाने वाला, उसके साथ में उसकी पत्नी युवती पत्नी भी आई और दो किशोर लड़के 9-10 वर्ष के, एक 9, एक 10 वर्ष का, बड़े सुंदर राजा के दरबार में पहुंचे और बोले कि महाराज यदि आदेश हो तो हम लोग कुछ खेल दिखलाएं। ठीक है दिखलाओ। उन्होंने दो बांट गाड़ करके उस पर रस्सी टांग दी और नटनी को सिर पर एक घड़ा, उसके ऊपर में एक घड़ा, उसके ऊपर में एक घड़ा, तीन चार घड़ा रख, और वो एक बांस की लठ लेकर अपने हाथों में ऐसे रस्सी के सहारे ऊपर में चढ़ गई और चढ़ करके वो सुंदर रूप से नाचने लगे। लोग देख करके बड़े आनंद, ऐसा सुंदर नृत्य किया जो कभी लचक जाती इधर, कभी इधर लचक जाती, कभी प्रदीप लेकर के नाचने लगती, कभी सिर को टेढ़ा कर देती, किंतु बैलेंस ठीक रहा। देख करके आश्चर्य हो गए। जब वो नीचे उतरी, रानी ने अपना एक सोने का हार उसके गले में डाल दिया। जब डाल दिया तो उसके दोनों लड़के दोनों तरफ से लगते, मैया मुझे दे, मैया मुझे दे। मैया ने वो हार निकाल लिया और बीच में रख लिया, दोनों परस्पर खींचने लगे। मैया वहां से थोड़ी सी हट गई। अब दोनों परस्पर लड़ने लगे, वो अपनी तरफ खींच रहा वो भी नीचे। जब दोनों ने देखा जैसे ये हमारे हाथ में नहीं आ रहा, बस कमर से मैं उनसे सौ मार, उन्होंने एक साथ उठाई और छपाक से उसने उसके ऊपर मारा, उसने दोनों के गले उतर करके। नटनी जो थी उसने देखा, हमारे दोनों लड़के मर गए एक साथ में, और मैं जी करके क्या करूं। देखते देखते ही लोगों के निवारण करने के पहले ही उसने तलवार उठाया और अपना गला काट करके छोड़ा। नटनी कहा, हमारी पत्नी भी मर गई, बच्चे भी मर गए, और मैं किस तरह करके बस उठाया तलवार उसने भी। लोग देखते रह गए, बड़ी घृणा लोगों को, ये उत्सव हुआ या देख नाच हम लोग देख रहे हैं, क्या हो गया है। लोग वहां से उठे, रानी भी बड़ी दुखी अपने महल में चली गई, राजा महल में चले गए। बड़े लोग दुखी थे। दूसरे दिन राजा के यहाँ एक पत्र आया, महाराज हमने पहला जो खेल दिखलाया उसको तो आपने पुरस्कार दिया, और जो अंतिम खेल हम लोगों ने दिखलाई उसका आपने कुछ भी पुरस्कार दिया नहीं। हम चारों जैसे के तैसे बचे हुए हैं, कोई भी मरा नहीं है। यदि विश्वास नहीं हो तो हमारा पार्टी घर है, हमारे घर में आकर के पधारिए और हमको देखिए, किंतु पुरस्कार लाना भूलेंगे मत। एक बड़ा उनको विस्मय हुआ। साथ ही साथ में राजा रानी और सब लोग, उनके मंत्री संतरी सब लोग वहां पर उसके घर गए। देखा जी मुस्कुराता हुआ मन्नत और उसकी जुआ स्त्री हंसती हुई हाथों में माला लिए हुए महाराज का अभिनंदन और रानी का अभिनंदन। महाराज हमारा पुरस्कार है, देखिए हमारे ये दोनों बच्चे हैं और हम लोग। साधारण एक नट ऐसा कर सकता है, भगवान कहते हैं। अरे और की तो बात यही, हमारे मठ के पास में ही आज से कल 8-10 वर्ष पहले बंगाल का कोई एक ऋषि राजा कौन आया था, आया था, उसने हजारों लोगों के सामने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब लोग एक बच्चे को काट करके और डाल दिया बक्से में, और उसमें 3-4-5 ताले बड़े बड़े लगा दिए और एसपी को उसने दे दिया, ये आप रखिए। सब लोग देख रहे हैं, भर दिया। इसके बाद में अच्छा आप लोग बैठिए, कहा जैसे बेटा इधर आ जा, इधर आ जा, और बक्सा बंद है सब कुछ, और दूसरे से पिताजी ने इधर आया, इधर आया, और कहते उधर से वही कटा हुआ जिसका मुंड, और वो आ। अभी हाल में कलकत्ते में वहां पर 22 सराय और सब लोग वहां पर उपस्थित थे। अंग्रेजों का जमाना, बीसी राय था, उसने कहा कि मैं खेल दिखलाऊंगा। सब लोग एकत्रित हुए, 4 बजे का समय दिया, 4 बजे सब लोग मैं भी आऊंगा। 4 बज गया, 4:30 बज गया, 5। अंग्रेज जो तो समय से बड़े पंक्चुअल होते हैं, जब 5 है तो उनको बड़ा क्रोध हुआ, आएगा तो हम उसे पहले से पीट करके और जेल में बंद कर। सभी लोग बड़े थे उस पर क्रोधित हो रहे थे। 5 बजे के समय पान खाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, ऐसे घड़ी देखता हुआ वो आया। देखते ही एसपी और लोग जितने थे उसके ऊपर में बिगड़े। चार बजे की बात, आप 8 बजे आ रहे हैं, पर इसको जेल में बंद करो। कहे हजू हमको जेल में तो जरूर बंद करेंगे, आप लोग कर सकते हैं, किंतु अपनी घड़ी में जरा देखें ये कितना बजा है। सब लोगों ने घड़ी देखा, ठीक 4 बजा है। यदि एक असाधारण जादू जानने वाला ऐसा कर सकता है और प्रभु ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु का न तो बाण लगता है और न तो ये उनका शरीर का पाप होता है, ये सब भगवान की ऐसे ही माया के प्रभाव से दिखला रहे। इसलिए ऐसा कभी भी मत सोचो जो भगवान को बाण लग गया वो मर गए और उनका शरीर बदल गया, उनका दाह संस्कार, ऐसा करना अपराध होता है। इसलिए भगवान चिन्ह है, वो जिस शरीर को लेकर के आते हैं उनका शरीर नित्य है, अभी भी है, अंत में भी रहेगा, पीछे भी रहेगा, सप्त में उनका बसना। कृष्ण का ये बंसीधारी रूप, कृष्ण का यह सुंदर रूप सप्त में है और इसलिए उनको ऐसा अनित्य मत समझेंगे। वैसे ही जैसे कृष्ण का वैसे वैष्णवों का भी होता है शरीर, उनको साधारण प्राकृत रूप में मत समझेंगे, उन लोगों का भी शरीर नित्य होता है, हमारे कल्याण के लिए आते हैं और तरह तरह के इधर उधर से नटबाजी कर करके हमें उपदेश दे करके चले जाते हैं, इसलिए उनके चरणों में भी अपराध नहीं होना चाहिए। परीक्षित महाराज जी मरे नहीं, ऐसा मत समझिए मर गए। परीक्षित महाराज जी को जिसने कृष्ण ने खिलाया गोद, उनको अपनी माता के गोद उनके
गर्भ में
उनकी रक्षा की और ऐसी अमृतमयी कथाओं को सुना, अब वो मर जाएंगे, हम लोग तो तर जाएंगे, वो मर जाएंगे, या हो सकता है ऐसा कभी नहीं। इसलिए ऐसा मत समझेंगे, ये तो उनका एक कौशल था श्रीमद भागवत को प्रकाश करने के लिए, जो लोगों का इसी से सुनकर के उद्धार होगा। इसलिए परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से 2 आंगुल बड़े ही समझिए, कम मत समझेंगे। सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की गोदी में कभी खेले, ये तो सौभाग्य नहीं हुआ। कृष्ण के अर्जुन कल बतला में जब उनके भगनी पति बने, सुखदेव गोस्वामी के परिचय ये वंश में किसी को लिए ये सौभाग्य मिला, ये सब चीजें। इसलिए जैसे सुखदेव गोस्वामी परम मुक्त हैं, ये भी परम मुक्त हैं, वो इस प्रकार से माया भल की राजी दिखला करके और श्रीमद भागवत को रख करके और वो, इसलिए उनके चरणों में हम लोग अपराध न करें। इसलिए भागवत की जो कथा है बस एक सार है, क्या सार है उस सार को मैं बतला रहा हूं। जैसे हमारे वाल्मीकि जी ने रामायण रची, 1 करोड़ श्लोक, मनुष्य देवता गंधर्व तीनों लड़ने लग गए। मनुष्य कहे हमको मिल जाए, देवता लोग कहे उसको, असुर लोग कहे मैं इसको मिल जाए। शंकर जी आ गए, लड़ो मत मैं विभाग कर देता हूं, वह तीनों में विभाग किया, 1 करोड़ में 3 विभाग किया,
37 लाख
दे दिया,
1 लाख बचा,
1 लाख बचा, 1 लाख में ठीक 37,000 दे दिए,
1,000 बचा,
1,000 बच गया, 1,000 को 3 भाग किया,
337
एक श्लोक बच गया। एक एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, एक एक चरण दे दिए और लास्ट 1 चरण बचा, 1 चरण में 8 अक्षर होते हैं, 8 अक्षरों को उन्होंने विभाग किया, 2-2 अक्षर दे दिए, बाकी कितने बच गए, 2। कहे अब ये 2 नहीं देंगे, यही कृष्ण कहो या राम कहो। इसलिए समस्त भागवत का और सबका सार ये भगवान नाम है। यदि भगवान नाम हो गया तो भागवत हो गया, और जब भगवान नाम नहीं किया तो भागवत नहीं हुआ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा हरे नाम हरे नाम हरे नाम ऐव केवलम कलौ नाम सेवनम से, यही श्रीमद् आज यहीं पर हम लोग भागवत समाप्त करते हैं। कल इसका बचा हुआ जो सारांश होगा और प्रारंभ से अंतिम तक योग जाएगी, एक विहंगम दृष्टि से हम उसका स्मरण करेंगे, इसके बाद में सभी लोग हम श्रीमद् भागवत का पूजन करेंगे। और ये भागवत कृष्ण स्वरूप है, द्वादश स्तंभ कृष्ण के जैसे अंग हैं ये मान, हम लोग उनको कृष्ण समझ करके इनकी पूजा करेंगे और प्रार्थना करेंगे हमें ये बल दें कि इस भक्ति का हम पालन कर सकें और सभी भव सागर को पार करके वृंदावन के कुंजों में राधा कृष्ण की सेवा कर सकें, यही प्रार्थना करके हम लोग श्रीमद् भागवत को पंचा कल्प
अधिकारी व निर्माण हुआ है मिलता है कि जहाँ पर जैन जी ने भक्ति जन समाधि से प्रभु का दर्शन किया, श्रीमद् भागवत के पुराण ग्रंथ का दर्शन किया, उनके लीलाओं के दर्शन किए, यथावत जैसे जैसे दर्शन किए तथावत उन्होंने ग्रंथ के रूप में प्रणायन किया और उन कथाओं में सभी लोग तृप्त किए, जिन कथाओं का श्रवण करने से समस्त प्रकार के शोक मोह भार दूर हो जाता है, इसलिए उन कथाओं में रतिमति हो। द्वितीय स्कंध भागवत में शब्द मुक्ति और कम मुक्ति का वर्णन किया है, जो कि महाराज परीक्षित जी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने प्रश्न किया था, सात दिन में हमारे मृत्यु होने वाले हैं तो मुझे क्या करना चाहिए और संसार के लोगों को एक न एक दिन जाना होगा और उनके लिए क्या करणीय है, इस प्रश्न के उत्तर में सत्यमूर्ति स्वरूप
उद्धार होने का उपाय
हरे राम संकीर्तन और इस प्रकार निर्णय लेते ही ये कहा कि मैंने इस समय निर्णय दिया, ये बात नहीं पहले पहले आचार्यों ने महापुरुषों ने सबने सबने निर्णय दिया है कि भगवान की कथाओं का श्रवण उनके लीलाओं का कीर्तन तथा श्रवण कीर्तन और ये नामों का कीर्तन लीलाओं का स्मरण इत्यादि प्रकार से और उनके सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन इस नाम संकीर्तन के द्वारा सभी लोग मुझे प्राप्त भगवान को प्राप्त करेंगे, जो मार्ग में बहुत काल तक जो समाधि के द्वारा चित्त को एकाग्र करके लोग हम परमात्मा में चित्त स्थिर करते हैं किंतु ब्रह्मलोक तक जाकर भी उनके मन में शांति नहीं होती, जिसकी परमोदार को यही किया है प्रभु का भजन नहीं किया न कीर्तन किया है इसलिए उनके मन में शांति नहीं होती, अतः इस जोगवती को पार करके भी आतंत्र चलना नहीं होता है, इसलिए द्वितीय स्कंध में ब्रह्मा जी ने जैसे जैसे भगवान की आराधना की और भगवान ने उनके निवास में इस वेद ज्ञान को शास्त्र ज्ञान को प्रकाशित किए हैं उसी तरह से ये वर्णन करते हुए नारद जी को सुनाया और नारद जी ने समस्त संसार में समस्त जीवों को प्रभु की कथा सुनाकर ये भक्ति में प्रवेश कराया, ऐसे ऐसे श्रीमद् भागवत के जो दर्शन है उनका वर्णन आदि द्वितीय स्तंभ में हुआ, तृतीय स्कंध में सृष्टि तत्व का वर्णन हुआ है जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण में दस लक्षणों से युक्त है और जितने पुराण है उनमें केवल पांच लक्षण होते हैं किंतु श्रीमद् भागवत में दसों लक्षण दस प्रकार के लक्षणों का वर्णन हुआ है, इसलिए कहा है कि सृष्टि तृतीय स्कंध में सृष्टि तत्व सबसे विषय वर्णित हुआ है, जिसमें भगवान का नाम प्रचारी विष्णु ने माया के प्रति दृष्टि की और उनके दृष्टि के प्रभाव से चौबीस तत्व विकृत होकर उत्पन्न हुई ब्रह्मांड में निकला भगवान से। उनके साथ भगवान को सर्वश्रेष्ठ गुरु जरूर चाहिए विष्णु ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करके सबसे पहले अपने पसीने से पानी को उत्पन्न किया और पानी में शयन करते हुए भगवान ने अपने नाभि से कमल को निकाले और उस कमल में से ब्रह्मा जी हुए और कमल के नाभि में चौदह हुआ। इस प्रकार से उन्होंने सृष्टि करते हुए ब्रह्मा जी को सृष्टि कार्य में लगाया, जो कि प्राणियों के चौरासी लाख प्रकार के प्राणियों की शरीर को देह की सृष्टि की और उसमें कर्मानुसारी जीवों को उन शरीरों में प्रवेश कराकर उनको भोगिता भी प्राप्त कराए। मनुष्य उच्चावट जमीनों में भ्रमण करते हुए इस प्रकार नीच से कीर्तन के ऊपर को यहाँ सर्व से शुद्ध होकर भगवान के चरण कमल को कैसे प्राप्त करें, कैसे भक्ति की जाए, भगवान की आराधना की जाए, ये समस्त वर्णन कपिल सिंधु के संवाद के द्वारा दिखाए हैं। ऐसे ऐसे सृष्टि तत्व वर्णन और अंत में जीव किस प्रकार से निकल से उधर के पाए भगवान के चरणों में पहुंचे, ये समस्त वर्णन हुआ है। चतुर्थ स्कंद में भी इस संसार में जन्म लेकर धर्म अर्थ काम जीवन का साधन करते हैं, यानी मनुष्यों के अंदर में इच्छा विलासा होती है, उसके द्वारा उसके साथ मनुष्य अर्थ संग्रह करते हैं, अर्थ के द्वारा संसार में प्रवेश कर पुत्र पर पौत्र नागरिक होती और पुत्र परिवार आदि के साथ आत्मीय सजनों के साथ रहते हुए एक दूसरों के प्रति जो कर्तव्य निभाते हैं, इस प्रकार कर्तव्य रूप धर्म का पालन करते हैं, ये त्रिवर्ग साधन है। इन त्रिवर्ग का साधन करते हुए मनुष्य क्या होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्र ये सब के अधीन होकर शांति को नहीं प्राप्त होते हैं और झगड़ा विवाद अशांतियाँ फैल जाती हैं। इसलिए संसार दुखमय अशांति का कारण जान करके इससे निवृत्त हो तथा इस संसार के तत्व को जिस शरीर में अहंकार अभिमान के द्वारा हम डूब जाते हैं, उस शरीर के साथ और काम का जरा का रोग रहनी तो मोह जरा रहनी ये सब संसार के जो कुछ है ये सब का कैसे संघर्ष होता है और इसका क्या परिणाम होता है, ये सब का वर्णन पुरंदर उपाख्यान के द्वारा दिखाए हैं। और इस वर्णन करते हुए संसार के रूप बीमारी में ले गए, यानी हम लोगों को इससे होने की बात है। इसी प्रकार पंचम स्कंद में श्री भूगोल भावों आदि का वर्णन करते हुए ये संसार किस प्रकार है भगवान कवि उपाख्यान के द्वारा भगवान जी के जीवन चरित्र के साथ में उसको प्रस्तुत किया है। संसार के अदर्शी यानी यह वर्ण जिस संसार में काम क्रोध लोग के शिकार होकर हम फंस जाते हैं, इससे हम निवृत्त हो इसलिए संसार का चित्रण किया है। और साथ ही साथ कर्म मार्ग में अन्य कर्म बुराइयां करते हुए किस तरह से समूहति अनुमति को प्राप्त करते हैं नरक आदि का भी वर्णन किया है। सत्संग कर्म में भगवान इस संसार में अपने नाम के द्वारा समस्त जीवों की रक्षा करते हैं, जो और कोई उपाय नहीं, इस संसार में हमें कोई बचाने वाला नहीं है, एकमात्र हमारे राष्ट्र प्राणा प्रभु ही है। अतः संत कर्म भारत में ये सब दिखाया है। तथा संसार माया मोहिनी मोहिनी में